Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी को आसान बनाने के लिए न जाने हम क्या क्या करते आए, लेकिन हमारे जो खुद के हैबिट्स हैं, पहले तो हमें उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एफर्ट्स भी हमें खुद लेना होगा। आज हमारे साथ हैं बीके मोहन सिंगल भाई जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। भाई जी, जब हम बात करते हैं जिंदगी में खुशी की, पीस की, हमने पिछले एपिसोड्स में इन दोनों को कवर अप किया था कि किस तरह से खुशी हमारी जिंदगी में हमारे खुद के गले का हार है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और साथ ही साथ पीस के बारे में हमने ये जाना कि पीस जो है वो इनर पीस हमारे खुद के अंदर में भरा हुआ है, बस हमें उसे इनकल्केट करने की ज़रूरत है। अभी आज मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन होप जो एक होता है वो कहीं ना कहीं खोसा चला गया है। हमें ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशंस जो लोगों से बढ़ती जा रही है और होप ख़त्म होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए, हम सब चाहते तो हैं कि हमारे जीवन के प्रति, सबके प्रति आशाएं बनी रहें, होप बनी रहे
जी।
लेकिन कई बार न चाहते हुए भी हमारी आशाएं जो है ना, वो धीरे धीरे धूमिल होने लगती हैं और कई बार वो निराशाओं में परिणित हो जाती हैं।
करेक्ट।
और इसका एक मुख्य कारण है कि हम जो कार्य करते हैं, सफलता की आशा करते हैं, जब कई बार करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, असफलता का सामना करना पड़ता है, तो हमारा आशाएं, हमारी उम्मीदें उसके प्रति कम हो जाती हैं।
जी बिल्कुल। लेकिन भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं बात करूँ होप की, कुछ लोग होते हैं जो एक बार गिरने के बाद उठते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, अब पूरी तरह से होप खत्म हो गया है। तो ये ऐसे जो टाइप के लोग हैं, इनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग तो फाइटर्स होते हैं कि मैं कितने बार भी गिरूंगा, मैं उठ करके मंजिल को हासिल करूंगा, लेकिन जो एक टाइम में ही थक जाते हैं, जो मायूस हो जाते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है?
सबसे पहले तो हमारी उनके प्रति बहुत आंतरिक सहानुभूति होनी चाहिए। हाँ, एक तो वो चूंकि गिर गया, फेल्योर हो गया, उसके अंदर निराशाएं बहुत अंदर तक भर गई हैं, तो पहले तो उसे प्रेम की, सहयोग की उसकी आवश्यकता है।
हाँ जी।
इसीलिए उसके जीवन में जो भी स्थूल चीज़ों की आवश्यकता है, पहले तो हम उसका फुलफिलमेंट करें
जी।
क्योंकि ये चीज़ डायरेक्टली मैं यहाँ लिंक करना चाहूँगा, कोई डिसास्टर नेचुरल होती है या कोई, तो सडनली जीवन भर की सारी कमाई, सारे संबंध एकाएक ही खत्म हो जाते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में अंधकारी दिखाई देता है
जी। बिल्कुल।
तो उस समय हम जितना प्रेम की बात करेंगे वो बाद में पहुंचेगी, पहले उसकी स्थूल आवश्यकता जीवन की जो है वो हम फुलफिल करें
जी।
उसके साथ साथ बड़ा प्रेम, सद्भाव, सद्भावना के साथ उसे ये आवश्यकता है कि लाइफ इज नॉट कम टू एन एंड, ये जीवन बिल्कुल समाप्त नहीं हो गया, एक फेज़ आपका, वो आपको ऐसा लग रहा है लेकिन जीवन में अभी बहुत बहुत कुछ बाकी है।
Correct.
आप कर सकते हैं, तो पहले उसमें आशा का संचार करना आवश्यक है, और साथ ही साथ उसके अंदर में ना ये दृढ़ विश्वास हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उसको जागृत करने के लिए एक एटीट्यूड और ये दृष्टिकोण उसका बदलना ज़रूरी है
जी।
दृष्टिकोण के लिए अक्सर कहा जाता है, एक तो दृष्टिकोण अपने प्रति है, वो सेल्फ एस्टीम का हो, उसमें आत्मविश्वास हम पैदा करने की भावना रखें। दूसरी बात, दृष्टिकोण ईश्वर के प्रति, क्योंकि जब तक उसे कुछ थोड़ा ऐसे मौके पर कोई सुपर पावर वगैरह में व्यक्ति का स्वाभाविक रीति से विश्वास बढ़ने लगता है।
Correct.
क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनके प्रति फेथ। तीसरा, दूसरों के प्रति जो हैं, अड़ोस पड़ोस के, उसके संबंधी हैं, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उनके प्रति सद्भावना, आदर और प्रेम की भावना
जी।
साथ साथ पास्ट के प्रति जो एटीट्यूड है वो फॉरगिवनेस का होना चाहिए, जो बीता
उसे भूल जाए,
भूल जाए धीरे धीरे। और भविष्य के प्रति जो एटीट्यूड हो वो बहुत आशा का हो, बहुत सफलता का हो भविष्य के प्रति
जी।
तो ये सब का आधार जो है ना, वो आधार यही है कि पहले अपने प्रति दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ विश्वास हो ईश्वर के प्रति, हो तो भविष्य के प्रति भी उसका दृष्टिकोण बदलता जाएगा। और इसके लिए एक चीज की बस आवश्यकता है, एक वर्ड की, वो वर्ड है बैलेंस।
करेक्ट।
तो बैलेंस कैसे, देखिए भगवान ने मनुष्य को भी बनाया तो उसके शरीर के बैलेंस के लिए दो टांग दी हैं। बैलेंस के लिए, ये तो फिजिकल हो गया, मेंटल बैलेंस के लिए ब्रेन के भी दो पार्ट हैं, लेफ्ट एंड राइट।
करेक्ट।
एंड लेफ्ट पार्ट डील्स टू मतलब लॉजिक, मैथमेटिक, कैलकुलेशन, मटेरियलिज्म, ऑल दैट। लेकिन राइट पार्ट जो है वो भावनात्मक पक्ष है, प्रेम, शांति, आनंद, इन सब का वो है। तो जीवन में दोनों चीज़ों की आवश्यकता, मटेरियल वैल्यू एज वेल एज स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो मटेरियल वैल्यूज कई बार अगर होती भी है, हमारे पास एसी है सपोज, मकान है, सब कुछ है, लेकिन संबंधों में मधुरता नहीं है। सपोज कहीं पर कटुता है तो एसी है, डनलो पिलो में सो भी रहे लेकिन नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार से जीवन के अंदर जब तक दोनों का समावेश नहीं होगा सुख शांति नहीं होगी। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड मटेरियल वैल्यूज, इसके लिए साथ साथ अक्सर करके क्या होता है कि ये जीवन की ना जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा ये बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे शरीर का बैलेंस बिगड़ा, एक टांग को कुछ हुआ, एक टांग से आदमी कितना चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ऐसे ही मेंटल बैलेंस हम सबका मोस्टली बिगड़ा हुआ होता है, इन द सेंस कि हम मेटरलिस्टिक ज़्यादा हो गए हैं और जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो दोस सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स वेरी सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, दे फेल मिजरेबली इन देयर डोमेस्टिक फ्रंट एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। तो आज आवश्यकता ये है कि ये बैलेंस को मेंटेन करेंगे, और जितना बैलेंस रहेगा ना उतना आदमी आशावादी भी होगा लेकिन साथ साथ यथार्थवादी भी। खाली आशावादी होना आवश्यक नहीं है, आशाएं बहुत हैं, लेकिन यथार्थवादी अगर नहीं है तो आशावादी भी बहुत ज़्यादा उसके जीवन में ना मायने नहीं रखता है
जी।
आशा बहुत ज़्यादा हो लेकिन प्रैक्टिकल ना हो, क्या फायदा।
बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई जी। अब जब हम बात करते हैं बच्चों की, बच्चों के अंदर हमने ये देखा है कि स्पेसिफिकली एग्जाम का समय जब आता है तो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा होप रख करके उससे एग्जाम लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। वो फियर होप जो एक चीज है उसे मार डालता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे बच्चों के लिए आपके हिसाब से क्या राय है जिससे वो होप भी अंदर क्रिएट करके रख सके और साथ ही साथ एग्जाम भी अच्छी तरह से लिखे।
देखिए बच्चों के ब्रिंगिंग अप में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है।
करेक्ट।
तो एक तो आजकल के पेरेंट्स की भी ये बात है कि बच्चे का अगर सपोज 80% भी आया है, वो ये कंपेयर करेंगे, देखो तुम्हारे पड़ोसी उसका तो 85 है, उसका 90% है। तो इस कारण से बच्चे के अंदर यही भावना हो जाती है, कहीं ना कहीं हीन ग्रंथि की भावना पैदा होने लगती है
जी।
तो एक तो हर एक का अपना अपना रोल है और बच्चे की कैपेसिटी के मुताबिक उसने जो पाया है उसमें उसे शाबाशी दें, आगे बढ़ाएं, और जितना आगे बढ़ाएंगे पेरेंट्स वगैरह उतना बच्चा आगे बढ़ता जाएगा।
बिल्कुल।
दूसरी बात ये, पेरेंट्स फिजिकली तो ध्यान रखते हैं कि उसको ट्यूशन क्लासेस करवा दें, खाने के लिए अच्छा दे दें, न्यूट्रिशियस फूड वगैरह दें, सब कुछ करें, लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की, उसकी तरफ पेरेंट्स का ध्यान उतना ज़्यादा नहीं रहता है।
बिल्कुल।
तो इस कारण से उसे ये याद दिलाएं, देखो तुम ये सक्सेस जो है ना, इट इज़ नॉट वेरी फार एंड डिस्टेंट थिंग, और मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बड़ी सहज है, तुम्हारी रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। उसे याद दिलाएं, देखो तुमने जब पहली बार साइकिल चलाई थी तुम कितनी बार गिरे थे, अभी तो तुम बिल्कुल सहज चलाने लगे हो। इसी तरीके से कोई भी चीज़ प्रैक्टिस, तो उसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस की, स्टडीज़ की आदत पड़ जाएगी तो ही कैन डू वंडर। होता क्या है कि शुरू में काफ़ी 2-4-6 महीने हम लोग ऐसे ही निकाल देते हैं, बच्चे की पढ़ाई ध्यान तो देते हैं लेकिन बच्चा उतना कंसंट्रेट नहीं करता जितना, जहाँ उसके हॉबी है, नेचर है, उधर की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जाता है, अटेंशन ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर शुरू से ही वो ध्यान देना शुरू करेगा रेगुलर स्टडी की तरफ, तो अक्सर करके देखा जाता है जिनकी पोजीशंस बहुत हाई होती हैं वो यही बताते हैं कि मैं पूरे साल भर तक इतने घंटे पढ़ा, रेगुलर पढ़ा, और जो मेरा वीक सब्जेक्ट था, वीक पॉइंट था, उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया।
करेक्ट।
हाँ, तो एक ये आवश्यकता है बच्चे की। साथ साथ बच्चे के साथ बैठ कर के ना उसके साथ दिल की ओपनली बात करें पेरेंट्स।
okay.
हाँ, होता क्या है ऐसे जब बच्चा ग्रोन अप पोजीशन में होता है ना, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं वो चाहता है शेयर करना लेकिन पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाता।
okay.
कई बार सोशल वॉल सामने आ जाती हैं, कई बार ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो पेरेंट्स भी चाहते हैं, बच्चा भी चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते शेयर। तो आज आवश्यकता यह है पेरेंट्स बिल्कुल उसे सच्चा प्यार दें, स्पेशली जहाँ वर्किंग वुमेन, वर्किंग मदर होते हैं ना, वहाँ बच्चे को उतना प्यार नहीं मिल पाता है, और इस कारण से बच्चा उस प्यार को ढूंढता है
जी।
और वो प्यार अगर नहीं मिल पाता है ना, तो फिर बच्चा थोड़ा निरुत्साहित सा होने लगता है।
करेक्ट।
ये कुछ मैंने सटल पॉइंट बताया, लेकिन जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसका और सटल दोनों का बैलेंस होना ये जरूरी है। बच्चे को घर में भी वैसा ही एटमॉस्फेयर मिले प्रेम का, उसके जो टीचिंग के लिए कंड्यूसिव हो, और साथ ही साथ स्कूल में तो जो मिलता है, अक्सर करके क्या होता है पेरेंट्स पढ़ाई की सारी बातें टीचर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, स्कूल के ऊपर, ट्यूटोरियल्स के ऊपर, और अपना घर में जो है वो पूरा ध्यान नहीं दे पाते
जी।
तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसके लिए बैलेंस भी पेरेंट्स के लिए, एक उनका फैमिली लाइफ और साथ साथ ये जो सोशल लाइफ, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है
जी। भाई जी, अब जब हम बात करते हैं ऑफिस की, ऑफिस फ्रंट में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे लोग, मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग तो यही चाहते होंगे कि हमारा प्रमोशन हो, क्योंकि कोई भी इंसान ग्रोथ चाहता है, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है।
बिल्कुल।
लेकिन कई बार कंटिन्यूस हार की वजह से बार बार वो प्रमोशन नहीं हासिल कर पाते, तो वो होप छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपकी क्या राय है जो अभी होप छोड़ करके जहाँ काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ बिकॉज उनका होप छूट गया है इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए?
देखिए, ऐसा कहावत है कि असफलता जो है सफलता की पहली सीढ़ी है
जी।
तो जीवन में असफलता ना हो ये तो किसी के पास भी, कोई के पास संभव नहीं है। अब्राहम लिंकन का खास उदाहरण देते हैं, जीवन भर वो असफल होते रहे, जो जितने इलेक्शन लड़े उन्होंने, म्यूनिसपलिटी का लड़ा, लेजिस्लेटिव असेंबली का, प्रेसिडेंट का, सब असफल होते गए। लास्ट में जब उन्होंने का प्रेसिडेंट का एक इलेक्शन लड़ा, उसमें वो सफल हुए। तो इतनी असफलताओं के बाद भी उनका निश्चय और विश्वास टूटा नहीं। तो ये कहना तो बड़ा सहज है कि असफलताओं में हम अपना विश्वास कायम रखें, लेकिन हो नहीं पाता है, कई हद तक संभव नहीं, आपने ठीक बताया। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इंटरनली अपने को सेल्फ एम्पावर करना पड़े परिस्थितियों का सामना करने के लिए, और सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए ये मेडिटेशन एंड द नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये काफ़ी हद तक मदद कर सकती है।
करेक्ट।
साथ ही साथ दूसरा ये है, वो इंट्रोस्पेक्शन करें कि किस कारण से उनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में बार बार असफलता मिल रही है। तो वो जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो कोई गलती कर रहे हैं, किसी चीज़ में वीक हैं, और इस कारण से उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो जो अपना उनका वीकेस्ट पॉइंट है, थ्रेड वीक है, उसको वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें
जी।
तो स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथन करें और वीकनेस जो है उनको, कमजोरियों को निकालते चलें। तो ये कहना तो ईजी है जैसा मैं आपको बताया ना, लेकिन अक्सर करके कई बार आदमी व्यक्ति टूट जाता है।
करेक्ट।
तो इसमें उसे सहयोग लेना चाहिए अपने जो साथी हैं, कहीं पर स्पिरिचुअलिटी का, योग का, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का, इन चीज़ों का सहयोग लेते लेते फिर वो ऐसी स्थिति पर आ जाएगा कि जहाँ पर सफलता उसके लिए डिस्टेंट नहीं रहेगी। और इसके लिए जैसा मैंने बताया बैलेंस, तो तो बैलेंस भी किस किस चीज़ का, तो एक तो ये है कि अलर्टनेस एंड रिलैक्सेशन, इनका बैलेंस। आज आदमी अलर्ट एक्टिव तो रहता है लेकिन रिलैक्स नहीं रह पाता। गीता में भी ना बहुत सारे श्लोक हैं, लास्ट श्लोक जो है गीता का कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धारा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर मितिर मम, मीन्स जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है। अब कृष्ण जो है वो विजडम का प्रतीक है और विजन का प्रतीक है, उन्होंने युद्ध नहीं किया। अर्जुन जो है वो युद्ध का उसका प्रतीक है, योद्धे का। तो आज आवश्यकता दोनों चीज़ों की है कि वी ऑल हैव बिकम वेरी एक्टिव लाइफ में, सुबह से रात तक बहुत ये काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो विजनरी होना चाहिए आदमी को, जो उसका इंटरनल एस्पेक्ट है, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता, इस कारण से दोनों का बैलेंस नहीं रहता। और इसीलिए कहा गया है जहाँ अर्जुन है कृष्ण है तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर मितिर मम, मीन्स जहाँ धनुर्धारी अर्जुन भी है और कृष्ण, मीन्स विजन भी है और एक्शन भी है
जी।
वहाँ पर विजय है, सफलता है, वहाँ धन धान्य है, वहाँ जस्टिस है, वहाँ जीवन में सब प्रकार की प्राप्तियाँ हैं।
हाउ ब्यूटीफुल।
तो इसीलिए आज दोनों चीज़ों की जो ये आवश्यकता है, बीच बीच में हम लोगों को कई बार अपने से समय जरूर निकालना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि बाहर के लिए तो हम सब बहुत समय निकालते हैं, लेकिन इंटरनली अपने से जब समय नहीं निकाल पाते हैं ना, तो हमारा इंट्रोस्पेक्शन पूरा नहीं हो पाता, और तो जो वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, उनको हम भर नहीं पाते हैं। इसीलिए जीवन में सफलता में एक ब्रेक कई बार लग जाता है, लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो ये अपने से समय, ये इंटरनल चीज़, सेल्फ एम्पावरमेंट, ये एक बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ। और दूसरा ये भी देखना चाहिए, कई हमारी आदतें जो होती हैं ना, उन आदतों के वशीभूत हमारा समय काफ़ी वेस्ट चला जाता है।
करेक्ट।
और उसको गेनफुल यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं
जी।
तो चाहते हुए भी हम उन आदतों को ना उनसे अपने को छुड़ा नहीं पाते।
करेक्ट।
मुझे याद आती है एक बात, ये हैबिट वर्ड भी जो है ना, ये किसी ने कहा ये HABIT हैबिट, हाँ, तो हैबिट डाई हार्ड, आदत जो पड़ जाती है बड़ी मुश्किल से बदलती है, चेंज होती है। ये वर्ड भी ऐसा है, यू सी हैबिट, इफ़ यू रिमूव H स्टिल इट रिमेंस ए बिट, थोड़ा रह जाता है। ए को भी रिमूव कर दें तो भी इट रिमेंस बिट समथिंग, बी रिमूव कर दें तो भी इट, आई रिमूव कर दें तो भी टी, कह देते भाई टी टोटलर, चाय की ही आदत है, और ये तो समथिंग ऑलवेज रह जाती है। वो आदत ही क्या, कई बार हंसी में कह देते हैं जो अगर बदल जाए आदत में, ये तो लाइटर वेन में है। तो आवश्यकता ये है कि उस बात पे कंसंट्रेट करके ना, अगर हम आदतों को छोड़ देते हैं तो जो चाहते हैं हम आदत, जो हमारा टाइम ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, मनी वेस्ट कर रहा है, अगर उस पर विजय पाना चाहते हैं, उसके लिए सेल्फ एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। और जितना एम्पावरमेंट होगा, कई बार नॉलेज तो होती है लेकिन उसको हम लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिगरेट डिब्बी होती है, उस पर लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन तो है, लेकिन कमजोरियों के वशीभूत होकर आदमी सिगरेट निकालता है, पी लेता है, चाहता है, दिमाग कह रहा है कि ये नहीं पियो, दिल कह रहा है अरे भाई पी लो, कुछ नहीं है। तो देयर इज ए फाइट बिटवीन हेड एंड हार्ट। तो ये हेड एंड हार्ट का भी बैलेंस अगर जहाँ होगा, वहाँ पर जीवन में सफलता है। ना तो बिल्कुल हार्ट के ही वशीभूत हो जाएं, दैट विच रिफ्लेक्ट्स द राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि इमोशनली बहुत हो जाएं, ना हेड के वशीभूत कि टोटली लॉजिकल और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, कि हेड एंड हार्ट का जहाँ बैलेंस होगा ना, तो कमजोरियों से मनुष्य अपने को छोड़ता चला जाएगा, तो जीवन में ऑटोमेटिकली उसे सफलताएँ मिलती चली जाएंगी। तो ट्राई टू अटैक ऑन द रूट। पेड़ होता है, अगर सूख गया, पत्ते को पानी देंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये रूट पर अगर जाके हम उसको पानी देंगे ना, वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो सकता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि ये बैलेंस बिटवीन हेड एंड हार्ट, बैलेंस बिटवीन मटेरियल वैल्यू एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। खाली ये भी नहीं कि मटेरियल वैल्यू की तरफ पूरे हो जाएं तो स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं। तो इसीलिए आजकल जितने भी एग्जीक्यूटिव कोर्सेज होते हैं
जी,
हर एक के अंदर मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक प्राइमरी स्थान ले लिया है
जी।
क्योंकि ये लाइफ में स्ट्रेस आएगा, टेंशन होगा, तो मेडिटेशन बहुत जीवन के लिए आवश्यकता है, जिससे राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन को प्रॉपरली डेवलप कर सके।
भाई जी, वैसे तो बात करें जब हम बैलेंस की, कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से हम होप खो देते हैं, तो वो होप वापस से बरकरार करने के लिए कैसे हम इस बैलेंस को मेंटेन कर सकें?
देखिए, होप जो आशा है जीवन के प्रति, वो पहले मनुष्य अंदर निराशावादी या आशावादी होता है
जी।
फिर वो बातें उसकी वाणी में आती हैं और फिर व्यवहार में आती हैं
जी।
और अल्टीमेटली जैसा अंदर है फिर वैसा उसका रिफ्लेक्शन होता है और वैसे ही सफलता या असफलता होती है। इसीलिए ये बैलेंस की बात बहुत आवश्यक है जीवन में। जितना बैलेंस हम लाइफ में मेंटेन करके रख सकेंगे उतना उतना आशावादी या निराशावादी होते चले जाएंगे। तो आशाओं को मेंटेन करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, ये आवश्यक है कि कुछ चीज़ों का हम बैलेंस रखें, जैसे डिटैचमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट पूरा हो, गीता में भी जो कहा है, कर्मण्येवाधिक रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। अब ये बड़ा एब्सर्ड सा रखता है, क्योंकि हम कर्म करते ही तब हैं जब मेंटली माइंड में उसका फल होता है, तो हमारा कर्म होता है,
गोल ओरिएंटेड हमारा टास्क होता है।
एग्जैक्टली, तो फल माइंड में होता है, तो इसका भाव असली ये है कि कर्म करते वक्त हम फुली इन्वॉल्व रहें, हमारा इन्वॉल्वमेंट 100% हो, इन्वॉल्वमेंट बाय हार्ट, इन्वॉल्वमेंट बाय माइंड, इन्वॉल्वमेंट विद ऑल द एनर्जीज। तो इन्वॉल्वमेंट पूरा, बट एट द टाइम ऑफ रिजल्ट ट्राई टू डिटैच योरसेल्फ इमोशनली, क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट हमारा उस वक्त भी रहा, रिजल्ट के वक्त भी, तो इफ द रिजल्ट इज नॉट एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, वी विल कम डाउन टू द अर्थ इफ द रिजल्ट इज नॉट एज पर। तो इसीलिए कार्य करते वक्त हम फुली इन्वॉल्व रहे, लेकिन रिजल्ट के वक्त इमोशनली डिटैच रहें। उससे फायदा ये होगा कि अगर मतलब रिजल्ट हमारे अनुरूप हुआ, बहुत अच्छा है, उसमें भी मनुष्य ऐसा भी ना हो जो गीता में कहा है, मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत दुख सुख हानि लाभ, सब में उसकी मानसिक स्थिति समान रहे। ये सफलता के लक्षण हैं, आशावादी व्यक्ति के भी लक्षण हैं। तो इस कारण से ये तब हो पाएगा जब हम इमोशनली डिटैच, तो डिटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट का बैलेंस। इसी तरह चीयरफुल एंड केयरफुल, ये बैलेंस बहुत आवश्यक है। केयरफुल भी रहें, जो भी एक्टिविटी है वो तो आवश्यक है, लेकिन चीयरफुल भी रहें, केयरफुल के साथ साथ खुश, हाँ, जितना खुशनुमा होंगे, खुश मिजाज होंगे, उतना उतना दूसरों से हमें सहयोग मिलता चला जाएगा। सिमिलरली बिजी एंड ईजी, आज लाइफ हर एक की बहुत बिजी हो गई है, तो बिजी होना भी आवश्यक है, लेकिन साथ साथ उस बिजीनेस में स्ट्रेस, टेंशन, दूसरों के प्रति कोई ऐसी भावना, नीचा दिखाने की भावना, वो सब ना हो, बिजी के साथ साथ ईजी, सहज भाव से वो कर्म होता रहे। सिमिलरली फ्लेक्सिबिलिटी एंड फर्मनेस, ये भी बैलेंस होना चाहिए। कहाँ हमें जीवन में फर्म होना है, और इसीलिए एक जगह ये भी कहा गया है शास्त्रों में हमारे, वज्रादपि कठोराणी मृदुति कुसुमादपि, मीन्स वज्र से भी कठोर लेकिन फूल से भी कोमल। ये हमारे ब्रेन का लक्षण है
जी।
ब्रेन में ना लेफ्ट एंड राइट है, तो कहाँ पर हमें वज्र से भी कठोर, इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, वहाँ वज्र से भी कठोर, और जहाँ ह्यूमन वैल्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी व्यक्ति की बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है डोमेस्टिक, फूल से भी कोमल। तो जितना हमारा उसके प्रति ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर होगा, उतना ही विल ट्राई टू गिव अस हिज बेस्ट जीवन में, वो सफलता का, आशाओं का, उसकी आशा के अनुरूप हम हो रहे हैं। तो इस रीति से जीवन के ये जो अलग अलग बैलेंसेस है ना, तो ये जीवन में बहुत आवश्यक है। और इमोशंस, भावनाएं, भावना के साथ यथार्थवादी, ये दोनों बैलेंस जीवन में होते रहे। तो अनेक अनेक बैलेंस हम जितना जितना रखते चलेंगे जीवन में, और ये सम अप करने में आ जाता है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज का बैलेंस।
करेक्ट।
और इसीलिए एक किसी ने कहा है, हो के मायूस नयो, हो के मायूस नयो, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही दोनों पांव से आगे बढ़ते रहिए।
अच्छा।
तो ये दोनों पांव फिजिकल की बात तो है, लेकिन साथ साथ ये जो दोनों बैलेंस आपने देखा होगा, ये डायगोनली अपोजिट है, अलर्ट रिलैक्स, बिजी इजी, एंड चीयरफुल केयरफुल। तो लाइक दैट, ये दोनों पांव का बैलेंस अगर रहेगा जीवन में ना, तो क्या होगा, भोर सूरज की तरह आगे बढ़ते जाएंगे, सफलताएं होती जाएंगी, आशाएं हमारी बढ़ती जाएंगी, और जीवन में खुशी, आनंद, शक्ति, शांति, ये सब जीवन में आती जाएगी।
आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, लेकिन इसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि किस तरह से हमें बिजी रहते हुए भी ईजी रहना है, क्योंकि भले हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत प्रेशर्स के साथ डील करना होता है, लेकिन फिर भी अगर हम ईजी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे मुश्किल आसान हो जाएंगे। थैंक यू भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो।
धन्यवाद।
दोस्तों, आज हमने क्या जाना, वैसे तो हम जिंदगी में केयर फ्री जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम चेयरफुल नहीं रहते हैं। अगर हम खुश रहेंगे ज़िंदगी में, तो हम महसूस करेंगे कि हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। एक मुस्कुराहट आपकी सभी गमों को भर सकता है। तो मुस्कुराते रहिए, और कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।